आयत 142 से देखिएगा, सयकुलु सुफहाउ मिनन्नासी, अन करीब कहेंगे लोगों में से बेवकूफ, मा वल्लाहुम, किसने फेर दिया इनको, अन किबलतिही मुल्लती कानू अलैहा, उस किबले से जिस पर ये थे। जवाब दे दो, कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, यहदी मन यशा, वो राह दिखाता है जिसको चाहता है, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। पहले लफ्ज है कि सयकूल, अरबी जुबान में दो सीगे होते हैं, एक होता है माजी और एक होता है मुजारे, सबको याद है ना, माजी और मुजारे। मुजारे में क्या चीजें होती हैं बोलिए, सब सबको आता है, हाल या मुस्तकबिल, यही कहते हैं ना। यहां यकूल का लफ्ज आया, माजी है कि मुजारे, मुजारे है ना, काला माजी, यकूलू मुजारे, बट यहां मुजारे से पहले सीन लग रहा है, तो अब इसका मानी सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल होगा। बात समझ गए, हम ये नहीं कह सकते इसका तर्जमा, देखिए ये लफ्ज हो सकता था यकूल सुफहा, आयत पे नजर डालेंगे ना फिर मेरी बात समझ आएगी, या आयत अगर ऐसे होती ना यकूल सुफहा तो मानी क्या था, कह रहे हैं बेवकूफ लोग, या दूसरा मानी क्या होता, कहेंगे बेवकूफ लोग। तो हमारे जहन में शुबा होना था कि ये आयत किबले की तब्दीली के हुक्म के नाजिल होने के बाद उतरी है या पहले उतरी है, क्योंकि कह रहे हैं तो इसका तो हुक्म आ गया, लेकिन सीन सोफा के मानों में होता है। सा का लफ्ज जहां भी कुरान में किसी फेल के साथ आ रहा है, जैसे यहां आ रहा है, तो मुजारे में सिर्फ मुस्तकबिल के मानी आते हैं, ये मुराद है इससे, ठीक है। कहेंगे सुफहा, सुफहा का लफ्ज पीछे भी पढ़ चुके हैं, सफीहुन की जमा, पिछले सबक में भी पढ़ा और कई जगह पढ़ा ना। सफाहत बेवकूफी दो वजह से होती है, एक होती है कम अकली, जैसे किसी का माइंड ही छोटा है, होते हैं कई ऐसे बच्चे बोन बाय बर्थ भी ऐसे होते हैं, कम अकली, अकली थोड़ी है, पूरी पूरी है जिसको कहते हैं, लेकिन एक होती है ला इल्मी, इल्म नहीं है, मतलब अकलमंद बहुत है लेकिन वो बात अभी तक उस तक नहीं पहुंची। यहां सयकुलु सुफहाउ में कौन लोग बराद है, यहां नोट कीजिएगा, उस मुतवक्के प्रोपेगंडे या शोर उठने की तरफ इशारा है जो किबले की तब्दीली का हुक्म सुन के उठने वाला था। आयत कैसे होती, और वो शोर किन्होंने उठाना था, भले आप बोल दीजिए सारे यहूद ने, तो ये आयत ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, सयकुलुल यहूद, सीधी सी बात थी, नोट करें, इनडायरेक्ट तबलीग, बात तो उन्हीं की है क्योंकि चोट तो उनके किबले पे पड़ी थी ना, बट यहां उनका नाम लेने की बजाय असुफहा, बल्कि मिनन नास में से कुछ लोगों में से, सारे नहीं, कोई अपने ऊपर ना ले, जो ये शोर करेगा उसी की बात हो रही है। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं लोगों में से, मा वल्लाह, मा क्या है, किस चीज ने, लफ्ज वल्लाह आपको बहुत दफा इधर कुरान में दिखेगा, तो अरबी जुबान में मुंह फेरने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं, मसलन अरादा, पीछे आपने पढ़ा एराज करना, तवल्ला, सदफा, यहां लफ्ज आ गया वल्ला, वल्ला किसको कहते हैं, पूरा फिरना, जैसे मैं आपकी तरफ इस वक्त मुंह भी किए हुए हूं ना, मैं पूरी आपके सामने बैठी हूं ना, अगर मैं यूं करूं इनको देखूं तो ये वल्ला नहीं है, ये आराधा है। अरस कहते हैं चुड़ाई को, ये जो फेस होता है ना, चिक्स, आड़ा चेहरा जो होता है ना, ये लंबा दिखता है, सामने से पतला दिखता है, साइड से लंबा, तो एराज क्या होता है, सिर्फ मुंह फेरना। अगर यहां आराधा का लफ्ज बार बार आता जो भी वल्ला आ रहा है, तो मानी क्या था कि नमाज में बस मुंह इतने से कर लिए, हालांकि आपको पता है पूरे के पूरे टर्न, तो वल्ला में क्या होता है, अब मैं पूरा पीछे से घूम के अगर व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करूंगी ना, तो ये वल्ला। किबले की तब्दीली का जो हुक्म आया था ना, अभी आपको मैंने इशारे से भी समझा दिया है कि पूरे का पूरा बदल गए थे मुसलमान, औरतों की सफें मर्दों की बन गई थी, मर्दों की सफें औरतों की बन गई थी, यानी यहां से टर्न लेकर घूमकर पूरा पूरा 90-180 के एंगल पे चले गए थे, समझ आई, क्योंकि इधर काबा था उधर बैतुल मकदस था, तो वल्ला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और वल्ला के लफ्ज में दोस्ती भी होती है, किसी को दोस्त बनाना वली, लेकिन वल्लत अन जब होगा तो दोस्ती से दस्तबरदार होना, कोई किसी से मुंह कब फेरता है, जब उससे दस्तबरदार होता है, छोड़ने का मन ही आ जाता है इसके अंदर। और भी लफ्ज जहां आएंगे तो आपको उसका फर्क बताऊंगी। तो मा वल्लाहु मन किबलती है मुल्लती, किबला किसको कहते हैं? किबल, काबिल, मुकाबला, सामने की चीज। मा कबल, कबल क्या होता है? सामने। खल्फ क्या होता है? पीछे। तो किबला जो चीज सामने रखी जाए। यहां इस्तलाह में, टर्मिनोलॉजी में, इस्लामिकली इसका क्या मानी है? वो घर जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। कौन सा था ये? अल्लती, वो जो। अल्लती क्यों आ गया? अन किबलती ही मुल्लती, अल्लती मुअन्नस के लिए, किबला मुअन्नस होता है। थे कानू वो अलैहा, उस पे। कानू से मुराद कौन लोग? ये सारे लोग जो 16 महीने से दूसरी तरफ मुंह कर रहे थे, अब इन्होंने उधर क्यों कर दिया? अलैहा इस पर। अलैहा इस पर से क्या मुराद है? इधर आप में से कोई गौर करेगा जुमले पे? यानी वो जिस किबले पर थे। अला तो कहते ऊपर, हाँ मैंने इस तरफ। तो अल्लती कानू अलैहा, टुवर्ड्स के मानों में आ रहा है, इला की तरफ आ रहा है। देखिए हम किबले के ऊपर तो नहीं मुंह करते, तरफ मुंह करते हैं ना। अला कहते हैं ऊपर, इला कहते हैं टूवर्ड्स। इंग्लिश में ज्यादा समझ आता है, अला अपॉन, इला टूवर्ड्स। तो अलैहा इलैहा की तरफ है। वैसे कई लोग ऐन और अलिफ को फर्क कोई नहीं करते, यहां फर्क नहीं करेंगे तो मानी में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। समझ आइए बात आपको? टूवर्ड्स के मानों में। यहां क्या, जिस किबले की तरफ ये मुंह कर रहे थे, अब इसको क्यों छोड़ दिया? अब ये शोर उठा। याद रखिए, जिंदगी में जब भी किसी का किबला चेंज होगा ना, यही शोर उठेगा। जिस तरह हमारे नमाज के किबले होते हैं ना, कोई एक जरा सा गलत रुख पे नमाज पढ़नी तो शुरू कर दे, जो कमरे में आएगा चीखेगा, हाय किबला इधर नहीं है, हाय इधर नहीं पढ़ना था। लोग इंची टेप लेकर किबला नापते हैं। हालांकि आगे भी एक लफ्ज आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, शतर। शतर कहते हैं सेमी हाफ को, जैसे एक गोल चीज है ना, जैसे ये मैट है ना गोल, तो इसका ये पूरा एक बीच में अगर आप एक खत खींचे ना, ये पूरे हिस्से को शतर कहते हैं। मैं और आप यूरोप में, अमेरिका में, हम सब अगर इधर मुंह करेंगे, जैसे तो हम पाकिस्तान जा रहे हैं ना, तो रास्ते में सऊदी अरब भी आता है, तो यहां से जाते हुए सीधी एक लाइन में किबला नहीं है, इस पूरे सेमी सर्कल के बीच में जहां भी पढ़ लोगे नमाज हो जाएगी। इतनी वुसत है। मस्जिद के अंदर जाके उधर ही पढ़ना है जिधर है, खाना काबा के अंदर जाके उधर ही पढ़ना है जिधर है, बट दूर से जाते हुए इतना बीच में गैप है, 19-20 इंचों शिंचों से, अगर स्वीडन से, नॉर्वे से, फिनलैंड से, यूरोप से, इधर उधर थोड़ा 19-20 हो जाए, बहुत बड़ी गुंजाइश है। असल में दीन की खूबसूरती बताई जा रही है। लोग नमाज के किबले के वक्त तो शोर करते ही सो करते हैं। आज भी जब कोई बंदा नमाज की रूह को पा लेता है, अल्लाह के इस कुरान को सीखने लग जाता है ना, उसकी भी जिंदगी का किबला बदलता है। देखिए किबले को आप सोचिए, सेंटर ऑफ लाइफ। इंग्लिश में जो सुनते हैं समझते हैं उनको समझ आएगी। हर बंदे का ना एक सेंटर ऑफ लाइफ होता है। उर्दू में बताती हूँ, हम में से हर एक का एक मरकज है। जैसे हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई, हमारे बापों की जिंदगी का मरकज क्या है? कमाना। कोई जॉब करता है, किसी का सेंटर ऑफ लाइफ उसकी शॉप है, किसी की टैक्सी होगी, किसी की जॉब है, कोई ऑफिस में जाता है, उनकी पूरी जिंदगी उसी पे घूमती है। उसी के मुताबिक घर आते हैं, उसी के मुताबिक सुबह चले जाते हैं, उसी के मुताबिक उनकी मीटिंग्स हैं। हम भी उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको पूरी तरह से असिस्ट करें। औरतों का सेंटर ऑफ लाइफ क्या होता है? घर, बच्चे। वैसे आजकल तो इतनी बात नहीं है, पहले होती थी औरतें जो घर बच्चे, मेरा घर मेरी जन्नत। आज तो वो औरत ने भी अपने आप को जॉब और बिजनेस ही में अटका लिया, इसीलिए तो इतने घर टूट रहे हैं। औरत का इंटरेस्ट का जो लेवल था ना सेंटर, वो घर से चला गया। सच्ची बात है, आज तलाकें इसलिए हो रही हैं, बच्चे भी इसलिए रोल रहे हैं कि औरत ने घर छोड़ दिया। और जरा सा दीन के लिए छोड़े तो तलाक के साइन आ जाएंगे कि आप दीन छोड़े, नहीं तो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। घर बैठे बच्चे पाले, वे आपके बच्चों को कैसे पालना ये सीखने जाती हूँ। मर्द कहते नहीं, कमाना है तो बाहर जाओ, पढ़ने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे सामने लोगों के दुख आते हैं बेचारों के, मैं हैरान होती हूँ कैसे मर्दों से वास्ता क्यों अल्लाह ने डाला इन औरतों का, कि जिनका अपना फर्ज था। अल्लाह कहता है नबी सल्लम के नाते सूरह अहज़ाब में आप पढ़ेंगे, मर्द का फर्ज बनता है कि अपनी बीवी की तालीम की जिम्मेदारी ले। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात को असर के बाद पढ़ाया करते थे, औरतों की क्लास लगती थी, आपकी बीवियों को कहा गया बस गुरना तुम जिक्र करो उन आयतों का जो तुम्हारे घर में उतरती हैं। तो बजाय इसके कि मर्द खुद उस पर खर्च करे, इख्तमाम करे, एक औरत बेचारी खुद से ही अपने कामों को करने के दौरान अगर थोड़ा सा इस काम पे आ गया है तो मर्द धमकियां तलाक ही देते हैं। बहरहाल ये चीज एक हकीकत है, आप जब दीन की तरफ आते हैं आपकी भी चॉइस बदलती है। आपकी दोस्तें कहेंगी इसको क्या हो गया, ये गिफ्तें छोड़ गई। आप कपड़ों की फैशन की बात करें, ये बात पलट देती है। तो लिखिए, जब भी आपकी जिंदगी में कोई चेंज आएगा, आपके इर्द गिर्द भी शोर उठेगा। एक पत्थर फेंकते हैं ना दरिया में तो लहरें उठती हैं, गर्दाब बनते हैं, लेकिन अगर आगे से आप स्टिल रहे ना तो एक दो दफा कहकर सब चुप हो जाएंगे। मसला कहाँ बिगड़ता है, जहां आगे से आप सफाइयां पेश करती हैं या फिर आप आगे से गुस्से में आ जाती हैं। लोग आपके आदी होते हैं, आप उनको फुल टाइम अवेलेबल होती हैं। अब आप 20% कम हो गई। आप देखिए कि हमने लोगों को बाज दफा अल्लाह के हक दिए होते हैं। एक है अल्लाह के हक, एक है बंदों के हक। हमने आम तौर पे अपने लाइफस्टाइल में अल्लाह के हक भी बंदों को ही दिए होते हैं। अपनी नमाजें छोड़ छोड़ के हम लोगों को खुश कर रहे होते हैं। तो जब आप हम अल्लाह का हक वापस हो अल्लाह को देने लगेंगे ना तो वो शोर करेंगे, तो खामोश रहें, परेशान ना हो। जवाब सुनिए कितना प्यारा है, और आपको याद आनी चाहिए तो पहले पारे के आखिर में आयात गुजरी थी, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। जवाब कितना खूबसूरत है भाई, किबले के बारे में क्यों झगड़ते हो, अल्लाह ही का है मशरिक भी और मगरिब भी, बहसों में ना पड़ो, यानी ये इतमाम हुज्जत है। कट डाउन द डिस्कशन कि तुम किबले की, उन्होंने बात देखी किबले की थी, जवाब इन्होंने अल्लाह की तरफ डाल दिया। ये नहीं कहा, आप जरा सा आयत पे नजर जमाएं तो मैं कुछ जुमले बोलूं, जरूरत करूं जो कुछ जुमले बोलने की। उनका सवाल क्या था, मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम, लफ्ज अल्लाह आया बीच में, उन्होंने अल्लाह की तो बात ही नहीं की। उनका झगड़ा तो ये था तुमने किबला क्यों छोड़ा, तो जवाब क्या होना चाहिए था, आप समझ गए मेरा अंदाज, जवाब क्या होना चाहिए था। उर्दू में कह दीजिए कि बैतुल्ला भी अल्लाह का है, बैतुल मकदस भी अल्लाह का है, ये जवाब होना चाहिए था ना। कुल बैतुल्लाही व बैतुल मकदसी लिल्लाही, ये नहीं कहा लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। बैतुल्ला को भी छोड़ दो, बैतुल मकदस को भी छोड़ दो, कोई तीसरी सिमत भी अगर अल्लाह कह देगा तो हम उधर भी मुंह कर लेंगे, ये मुराद है कि हम जाहिरी चीजों में नहीं पड़ते। इमारतें बुत नहीं होती, याद रखिएगा, असल अल्लाह का हुक्म है। मजाहर परस्ती की का रद्द किया जा रहा है कि हम बैतुल मकदस या बैतुल्ला को सजदा नहीं करते। फल्याबुदु रब्बा हाजल बैत, सूरत बलद की आयते हैं, बस चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करो। अगर खाना काबा में भी जाकर कोई खड़ा काबे को सजदा कर रहा है ना, सोच के क्या काबे में तुझे सजदा कर रहा हूं, तो शिर्क कर रहा है। आज कुछ हिंदू कहते हैं हमें पत्थर के बने हुए बुतों की पूजा से रोकते हो तो खुद पत्थर से बने हुए घर की पूजा करते हो, तो घबराए नहीं, कहें हम इस घर की नहीं करते, इस रब के घर की करते हैं। फिर क्यों जरूरत है इसकी, सवाल पैदा होता है। आप सबके जिम्मे क्वेश्चन आना चाहिए कि वाकई करनी तो इबादत अल्लाह की है और मशरिक भी अल्लाह के, मशरिक शरीका से इसम जर्फ मकान और रोशनी की जगह और मगरिब सूरज डूबने की जगह, तो फिर वाकई कहीं भी पढ़े। अभी जो नमाज पढ़नी है आप कोई इधर मुंह कर लें, कोई उधर कर लें, कोई इधर कर लें, फर्क क्या पड़ता है। तो उसका जवाब किबला यकजहती के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना, इत्तेहाद पैदा करना इस्लाम का एक बेसिक रिचुअल है। सूरत सफ है कुरान में, सफ के नाम पे, सूरत सुआफात है, सफों के नाम पे, फरिश्तों की खूबियां बयान की गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ की कितना इस्तेमाल करते थे, ये सारा कुछ हमें बताता है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को ऑर्गेनाइज चाहता है। अब एक खाना काबा कोई तसव्वुर में ले आए, कोई इधर मुंह करके नमाज पढ़ा, कोई इधर का आगे से लोग गुजर रहे हैं, कोई पीछे से जा रहे हैं, सबकी नमाजें बातिल होंगी। तो सारी बात का खुलासा कि यहदी मन यशाउ इला सिराते मुस्तकीम, वो राह दिखाता है जिसको भी चाहता है। यानी तुम अपने आप को इन झगड़ों से दूर करो। हमने 16-17 महीने बैतुल मकदस की तरफ पढ़ के देखी, हमें उसका भी कोई मलाल नहीं, क्योंकि उस वक्त भी हमारा रुख अल्लाह ही की तरफ होता था। कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, चौदहवें रुकू के शुरू में हमने बिल्कुल यही लफ्ज पढ़े थे, कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, कि अल्लाह ताला किसी एक सिम्मत में महदूद नहीं है, जिधर भी पढ़ोगे। असल बात है कि यहदी में ये शाओ इला सिरात मुस्तकीम, कि तुम्हारी ये नमाजें तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर ले जाएं, तुम ठीक तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर लो और तुम अपने आप को ठीक करो। और ये जो लफ्ज है ना सयकूल, तो ये सीन का नाम लिख लें, इसको हरफ इस्तकबाल कहते हैं, हरफ इस्तकबाल। हाँ क्यों? शुरू में आता है मुस्तकबिल करीब का मानी होता है, यानी अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया, यानी सा से मुराद है कि बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। अल्लाह ताला आपसे जो वादे कर रहा है, जो बता रहा है हालात, ये आपके सामने खुलने वाले हैं और ये सब कुछ होके रहेगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाएं तो अभी ये काम हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। और अल्लाह सुबहान तआला ये बात कहकर अल्लाह के नबी को बताता है, मैं आज के सबक में आपको हुक्म लिखाऊंगी जब ये काम फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। फरमाया वकज़ालिका, और इसी तरह। ये वाह क्या है, अल्लाह अकबर, दिल की ओट में पहाड़। और इसी तरह, किस तरह भाई? चले आयत पूरी पढ़ के देखें, फिर शायद बात ज्यादा समझ आने लगेगी। वकज़ालिका, और इसी तरह, जालनाकुम, हमने तुमको बनाया। कुम कौन है इधर? मुसलमान। क्या बनाया? उम्मतन वसतन, एक उम्मत वसत बनाया। क्यों बनाया? ली तकूनू, अब लाम को गिनती जाए, ली वास्ते, तकूनू ताके तुम हो जाओ, शुहदा अलन्नास, गवाह लोगों पर, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। बाकी रह गई ये, इसको अगर आप ये जितनी बात मैंने अभी तक पढ़ी है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दे, ये एक साइड इश्यू छेड़ा गया, आगे असल किबले की बात फिर आएगी। वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतल लितकून शुहदा अलन्नास, में किबले की तब्दीली की वजह बता दी। किबले की तब्दीली असल में उम्मत की तब्दीली थी। किबले की तब्दीली ये बता रही है कि नबूवत का ताज बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल के सर पे रखा जा रहा है। तुम अब वो उम्मत हो जिसको अल्लाह ने चुकाया। और ये लफ्ज है ना वाव और कज़ाली का, देखने में एक लफ्ज है ना, आपका क्या ख्याल है ये असल में कितने लफ्ज होंगे? का जा ली का, चार लफ्ज है। काफ है हरफे तशबी, तशबी देते ना, जैसे आप कहते हैं ये बच्चा अपने बाप की तरह है, का मसल, वही लफ्ज है। जा इसम इशारा है, ली दूर के लिए आता है, जालिका में भी बताई थी ये बात आपको, जालिकल किताब ला रही बा, और आखिर में का मुखातिब की है, कज़ालिका। का हरफ तशबी है, जा इसम इशारा है, ली दूर के लिए आता है, का मुखातिब की। आप बताएं कोई अरबी जुबान का मुकाबला कर सकता? और मैं सोचती हूँ कुरान की अरबी ना जो पढ़े उसको दूसरी अरबी का भी फायदा नहीं दे सकती। याद रखिएगा अरबी दो तरह की होती है, एक वो है जिसको पैरेबिक कोर्स कहते हैं, स्पोकन लैंग्वेज, बोलने वाली जुबान, आप पूरी भी सीख लेना तो आप कुरान के एक सुपारे की अरबी नहीं जान सकते, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। ये कुरान के 30 पारे अगर आपने अपने सीने में डाल लिए ना, लफ्जी तर्जमे के साथ और हल्की फुल्की ग्रामर के साथ, आप शायद अरबी बोलने के काबिल ना हो, मैं मानती हूँ अरबी समझने के काबिल हो जाएंगे। आपको अरबी बोलनी है ना, आप किसी अरब मुल्क जाएं, 1 महीने में फर फर बोलेंगे। मुझे यकीन नहीं आता कि जिस तरह हम अपनी उर्दू इंग्लिश बोल लेते हैं ना, इस तरह अरबी भी मैं बोल लेती थी जिन दिनों में मेरे इर्द गिर्द सारे अरब थे। मुश्किल ही नहीं लगती, मुंह पे जुबान पे बातें चढ़ जाती हैं। तो यहाँ आपको जुबान का हुसन दिख रहा है। वह कज़ालिका वा और का हर्फ है, जा इसम इशारा, ली दूर के लिए का है, इसी तरह, यानी ये बात हो गई क्या? जालनाकुम, हमने तुमको बनाया। क्या मतलब है कि ये किबले की तब्दीली असल में उम्मत मुस्लिमा की बात है। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझिएगा तो आपको बात वाजे समझ आएगी कि यहाँ उम्मत वसत का लफ्ज क्यों आया। वसत अरबी जुबान में उस जगह को कहते हैं जो ऐन दरमियान में हो। अगर आप यही फिर देख लीजिए मैट, आप मुझे बता सकते हैं कि इस मैट का वस्ती पॉइंट कौन सा है? ये है ना वसत। क्यों? यहां से इधर एक लाइन खींचे, यहां से पूरे दायरे में जहां मर्जी लाइनें खींचेंगे ना, ये लाइनें बराबर हैं। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट जो चारों तरफ से इसके अतराफ का, वो इसी को मरकज भी कहते हैं ना, न्यूक्लियस। यहां मुराद है उम्मते मुस्लिमा, तमाम उम्मतों में एक मरकज की तरह है। एक मानी तो इसका ये मिल गया आपको। हम मरकज में कैसे हैं? हम तो आखिर में आए हैं। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल करने लगे और इसका जवाब बड़ा अहम है। हम तो कहते हैं उम्मते मोहम्मदी आखिरी उम्मत है, यहूद गुजर के, नसारा गुजर के। तो पहले सवाल का जवाब आप मेरे से ही मांग लीजिए कि भाई ये वसत कैसे हो गई? आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी आए, अपने दौर में अपनी उम्मतों को नसीहत करते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। उनके बाद से लेकर अब कियामत के लोग, ऐसी सोचे आप, सोचे कि दुनिया में जितने लोग आने थे ना, वहां से लेकर नबी सल्लम का दौर निसफ तक आ गया। और आपने खुद फरमाया, हदीस है कि मेरी बेसत कुर्बे कियामत की अलामत है, कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, बस कियामत आएगी। तो इसी फिर ये आज मैट बड़ा काम आ रहा है। आप देखिए कि यहां से आदम का दौर शुरू हुआ। अब जब आदम अलैहिस्सलाम के ये हर दायरे को ही आप देखते जाए ना, ये आदम का दौर, ये नूह का दौर, ये इब्राहिम का, इस्माइल का, यूसुफ का, मूसा का, ईसा का, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुनिया यहां से शुरू हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच के आधी हो गई ना। अब यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दुनिया से जाना है, आखिरी नबी है। आपके बाद अभी दुनिया खत्म कहां होनी है? मिसाल ले लें, या होनी है उम्मते मुस्लिमा वसत में आ गई। कल तक नबी अल्लाह का पैगाम बंदों को देते थे। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि आपके बाद तो कोई नबी नहीं आना, तो अब जो बाद में आने वाले ये जो लोग हैं, इनको पैगाम कौन देगा? तो फरमाया तुम दोगे। उम्मते मुस्लिमा की ये मरकजी हैसियत है कि जो काम कल तक नबियों ने किया था, आज इस उम्मते मुस्लिमा को मिल गया। मैं कहती हूँ सर सजदे में चला जाए ना, तो इस ऑनर में कभी सर सजदे से ना उठे। नबुवत खत्म हो गई, ये जुमला लिखी है, ये जम है इस सबक का। नबुवत खत्म हो गई, कारे नबुवत अभी बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नबुवत नहीं आएगी, बट नबुवत का काम रहेगा। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा का दर्जा बनी इसराइल के अंबिया वाला है। आज के दौर में जिनको इल्म की खिदमत करने का शर्फ मिल गया, मैं कहती हूँ ये ऑनर मिल गया, बहुत बड़ा ताज है। हमारे सर बड़े छोटे हैं, ये ताज बड़ा कीमती है जिसको अल्लाह ने आज इल्म से जोड़ लिया ना। आपको लोग स्कॉलर कहे ना कहे, वो आपको कोई ओहदा दे ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उलमाए हक में अपना नाम लिखा लें, इल्म सीखने वाला भी आलिम होता है। पता है आपको ये बात, जो इल्म नहीं सीखेगा वो कभी आलिम नहीं बनेगा। तो इल्म से ताल्लुक जोड़ना नबुव्वत से ताल्लुक जोड़ता है। तो इल्म से ताल्लुक जब जुड़ता है ना, तो आप और मैं इस काम के करने वालों में आ जाते हैं। मेरे आपके लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता खोल दिया कि आने वाली दुनिया तक पैगाम हम दें। देखिए दुनिया पहले बहुत मुख्तसर थी। आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी तक दुनिया बहुत थोड़ी थी। उसके बाद कुछ इस किस्म के साइंटिफिक किस्म के एक्सपोजर हुए कि एकदम आबादी बढ़ी दुनिया की। पहले थोड़े थे ना, एक नबी आता था काफी हो जाता था, उसी की जुबान में आया, बात खत्म होके चली गई, बात खत्म हो गई। अब दुनिया में जब लोग बढ़े तो नंबर एक आबादी बढ़ी। एक नबी अगर आ भी जाए आज के दौर में, तो वो सारी दुनिया के लिए काफी नहीं होगा। दूसरी बात है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो बात मैं कहने लगी ना, ये आपके मेरे लिए बड़ी अहम है, जो माशाल्लाह वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं। आप और मैं मुसलमानों में से वो लोग जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हितों में रहते हैं, मसलन आप सब नॉर्वे में आए, स्वीडन वाले स्वीडन में गए, और इसी तरह से आप कह लीजिए कि जर्मन बोलने वाले जर्मन में गए, ये क्यों गए हैं आपको पता है? ली तकून शुहदा अलन्नास। अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को बढ़ा दिया, जैसे एक काम पहले एक बंदे ने करना था, अब एक उम्मत से करवा लिया। अल्लाह ताला कहते हैं वकजालिका जालना कुम उम्मतम वसता, ए मुसलमानों आराम छोड़ो, काम करो। बनी इसराइल की लंबी तारीख पढ़वाने के बाद अब तुम्हें मौका दिया जा रहा है, कल तक इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, उनके लिए था, अब तुम्हारे लिए। वो इतनी बुलंदियों पे जाके गिरे, और जो जितना ऊंचा जाके गिरेगा ना उतना ही ज्यादा चोट खाएगा, इसीलिए उनको कबाओ बि गदबिन अला गदब। अब तुम आम लोग नहीं हो, सूरह हज में आप पढ़ेंगे हुवज तबाकुम, तुम्हें चुन लिया उसने, तुम सोए ना रहो, तुम खाते ना रहो, ली तकून शुहदा। देखिए ये कैरियर है आपका, मेरा जॉब मिल रही है आपको मुझे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते अपना मुस्तकबिल बनाओ, तुम्हें इस पूरी दुनिया तक इस्लाम का ये खूबसूरत पैगाम पहुंचाना है। मिशनरी जील के साथ काम करो। आप देखिए कि जापान कराची जितना, 1 बजे रात तक उनके वर्कर्स ऑफिस में काम करते हैं, और फिर ऑफिस के साथ हर वर्कर को एक बेड मिला हुआ है। रात 2 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक उसी ऑफिस में सोते हैं, और सुबह 7 बजे से दोबारा दूसरी शिफ्ट करते, रात 1 बजे काम करते हुए उठते, सिर्फ वीकेंड्स पे घर जाते हैं वो लोग। ली तो कून शुहदा अलल नास तो नहीं है वो, क्यों तरक्की की? आपको तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बिल्कुल तबाह हो गया था, इतनी मेहनत उन्होंने की। अपने बच्चों को एक हाथ से लिखना नहीं सिखाते, आपको तो जापानी बच्चे दोनों हाथों से लिखना सीखते हैं। जब आज जलजला आया था जापान का, मैंने उस वक्त एक लेक्चर दिया, मैंने इस वक्त इनको स्टडी किया था, मैं हैरान रह गई, इतनी मेहनती कौम है, जूते ही नहीं पहनते, बच्चे को जूता नहीं पहनाते, कहते हैं कि अकल छोटी रह जाएगी। दुनिया में छा गए, मेड इन जापान की मोहर घर घर ले गए। हमने ली तक उनस कहाँ पहुँचाया, हम तो भी अपने घरों, अपनी जात, अपने खानदान, अपने बच्चों तक दीन ना ले जा सके। मेरे आपके जिम्मे ये पूरे हौसलों की जिम्मेदारी है, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ आपको भी और खुद को भी कह रही हूँ। जिसको नॉर्वेजियन आती है आप में से, आप पे ये जिम्मेदारी है, ली तकून शुहदा अल नास। जिनको नॉर्वेजियन नहीं आती दुनिया में, उनसे अल्लाह बिल्कुल नहीं पूछेगा कि नॉर्वे में इस्लाम का पैगाम क्यों नहीं गया, आपसे जरूर पूछेगा। लैंग्वेज सीखें, मकसद ली तकून शुहदा अल नास। ये शहादत हक की गवाही देना ही तो असल काम है। और कुम तुम, ये तुम लोग हो, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप कहते हैं ना वो चार छह कर नहीं रहे, नाम लेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, हाँ वो काफी दवा का काम करते हैं, हाँ वो एक है मस्जिद वाले, वो काफी तबलीग करते हैं, वो तबलीगी है ना, वो करेंगे, वो जमात इस्लामी करेगी ना ये काम, वो दावा नेट वाले ये काम कर रहे हैं ना, नहीं तुम। देखिए इमेजिन कीजिए कि अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपने बनानी है, एक दीवार बनानी है, उसमें 100 ईंटें लगनी है, तो 100 में से 5 ईंटें तो आप खूब मजबूत लगा दें, 95 ईंटें मिट्टी की लगा दें, तो क्या वो इमारत मजबूत बनेगी? और अगर 100 ईंटों में से 4 ईंटें निकाल ही दें, तो क्या वो गर्मी सर्दी और दुश्मन से बचाएगी? अब अपने ऊपर लीजिए, हम कितने आज, तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, 1.5 तो आज से 10 साल पहले थे, 1.5 बिलियन ईंटों में से आज कितनी ईंटें पुख्ता हैं, कितने लोग हैं जो उम्मत वसत का किरदार अदा कर रहे हैं? मैं उस उम्मत मुस्लिमा की इमारत में किस दर्जे की ईंट हूं, सोने वाली, खाने वाली, कपड़े पहनने वाली, मेकअप करने वाली, मस्तियां करने वाली, और अपने 2 बच्चों की फिक्र करने वाली? तो अफसोस है मेरे हाल पे, फिर मैं और आप उम्मत नहीं है, फिर हम गिरोहों में। वो कहते ना कि सबने सोचा कोई कर लेगा, किसी ने भी नहीं किया। Everybody think someone will do, nobody has done. आज हमारा ये हाल है, फुलां कर लेगा, इसलिए नहीं कर रहे, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसलिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बिजली जाती बहुत है, इसलिए करते हैं, गर्मी बहुत है, इसलिए इसलिए करके हम कजालिका कहकर अपने उजर देते हैं। याद रखिए, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका है। आज भी हम डोलती उम्मत को सहारे दे सकते हैं, अगर हमें आज इस बात का यकीन है। यहाँ कुरान की आयतें हैं, आप हदीस जोड़ के देख लीजिए, नबी सल्लम ने फरमाया कि तुमको जरूर ही नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना पड़ेगा, वरना एक ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह इतना नाराज होगा कि नेक लोग भी दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। उम्मत मुस्लिमा की बका कह ले जिंदगी, दावत से है, इंतजार, तबलीग। अगर आप में ये काम करते रहें, लोग माने ना माने, हम बच जाएंगे, हम सिक्योर हैं। اگر ہم نے یہ کام چھوڑا ہم ڈولے پڑے ہیں اس وقت. امت مسلمہ کی زندگی اس پیغام کو پھیلانے میں, نہ نعروں سے اسلام آئے گا, نہ جلسوں سے آئے گا, نہ جلوسوں سے آئے گا, نہ ایجیٹیشن سے آئے گا. کارٹون کوئی بنا لے, آپ شیشے توڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. حالات بدلیں گے, اپنے جذبات کو کنٹرول کریں, قرآن سنت کی لگام ڈالیں اور اپنے کندھوں پہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں. اپنے آپ سے کہیں اونلی می کذالک جعلنا کی, اپنے اوپر لیں کی, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم پر ہے یہ کام. آپ بولے میں نے صرف اسلام کا کام کرنا ہے, اس پورے سکول کا کام میں نہیں کرنا ہے, اس کی چابی میرے پاس ہے, میں آؤں گی تو کھلے گا, نہیں آؤں گی تو بند رہے گا. اپنے اوپر ہر ایک یہ سوچے تو آپ دیکھے سبا دیں گے. اور ہم کہتے ہیں میرے پاس بھی یہ چابی, اس کے پاس بھی, اس کے پاس بھی, وہ نہیں وہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ہم چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دین کے کام تو کر رہے ہیں پر عمارت نہیں بن رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے وسط دو انتہاؤں کے درمیان کی بہترین چیز ماڈریٹ کے معنوں میں. دین اسلام میں اتنی ماڈرنائزیشن ہے, لوگ کہتے ہیں بیکورڈ, آگے ہم پڑھیں گے, اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے. اسلام سے زیادہ روشن مزاج کوئی نہیں ہے, ہر طرف سے بیلنسڈ. یہود میں ایک انتہا تھی, نصارہ میں دوسری انتہا ہے. یہود کہتے تھے صرف اللہ کا غضب آئے گا, نصارہ کہتے صرف اللہ کا پیار ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ غفور الرحیم بھی ہے تو شدید العقاب بھی ہے. یہود پیریڈز میں عورتوں کو بالکل الگ کر دیتے, ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاتے, ناپاک سمجھتے, اچھوت سمجھتے. نصارہ اتنا قرب رکھتے کہ منع والی بات بھی کر لیتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یسلونک عن المحیض قل ھو اذی فاعتزل النساء فی المحیض, کہ عورت ناپاک نہیں ہے, اس کے ساتھ کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, سوچ سکتے ہو, ہاں خاص ایک تکلیف کی چیز سے اللہ نے روک دیا اسے رک جاؤ. ہر لحاظ سے ماڈریٹ ریلیجن ہے. یہود میں قتل ہو جائے تو صرف قتل, نصارہ میں صرف معافی, مسلمانوں میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص لے لو, قتل کے بدلے میں قتل کر دو, بلڈ منی لے لو, اور اگر کوئی معاف کر دے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اتنی رخصتوں کا دین ہے. آپ کے سٹور میں بھی ایک بک رکھی ہوئی ہے دین اسلام میں آسانیاں. آسانیاں کیا کیا, اس پوری بک میں انہوں نے قرآن و سنت سے چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ کیا کیا سہولتیں ہیں. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. پانی نہیں ہے, وضو کر لو تو یمم کر لو, تو یمم نہیں کر رہے جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہو. نماز نہیں چھوڑنی تو یاد رکھیے اللہ نے میرے آپ کے لیے یہ چیز رکھی ہے.